सभी श्रोताओं और शिक्षार्थियों को मेरा नमस्कार। और एम्ब्रॉयडरी जो होती है, जिसको हम कसीदा भी कहते हैं, कढ़ाई भी कहते हैं, और सदियों से चला आ रहा है, और जो एक मनुष्य है, महिला पुरुष बच्चों में मैं नहीं डिवाइड करना चाह रही, मनुष्य की एक अंदरूनी इच्छा होती है सुंदरता को देखना, सुंदर सुंदर चीज़ों का आवाहन करना, उनको पहनना, ओढ़ना, घर को सजाना, और जो ये सब चीज़ें बहुत पहले एक होम साइंस जो विषय है उसके अंतर्गत पढ़ा दी गई और आज भी पढ़ाई जाती हैं, और उसी को हम डिफरेंट डिफरेंट लेंथ ब्रेथ में उसके कंटेंट को आवश्यकता अनुसार डिज़ाइन करते हैं। तो जो एम्ब्रॉयडरी है वो क्या चीज़ है? एक एम्बेलिशमेंट, एम्बेलिशमेंट कहते हैं वर्ड जहाँ पे ऊपर से, चाहे वो आप काढ़ के बनाएं, चाहे चिपका के बनाएं, चाहे कोई भी तरीका इस्तेमाल करें, उसको सजा दें
जी।
चारों तरफ अगर आपका कपड़े लोग पहने दिखें तो आपको लगेगा क्या ब्राउन, लाल, पीले कुछ है ही नहीं, बुरियत होने लगेगी
जी।
तो बहुत ज़माने पहले इंडिया में, पर्शिया में, चाइना में, कुछ जगहों पर ये एम्ब्रॉयडरी की चर्चा शुरू हुई, उसको बनाने के तरीके तय हुए, कैसे कैसे बनाया जाएगा। और जब शुरू होती है चीज़ तो ऐसे ही किसी ने पड़े हुए धागे को सुई में डाला और कुछ कुछ बना दिया तो लगा अरे ये तो बड़ा खूबसूरत बन गया। फिर उस पर और काम होता है, फिर उसको एक डायरेक्शन दिया जाता है, एक डिज़ाइन बनाया जाता है, तरीके और प्रिंसिपल्स तैयार किए जाते हैं। तो किसी भी कपड़े को, ख़ास तौर से गारमेंट को, कुशन हो, अपोस्ट्री हो, कर्टेन हो, इनको डेकोरेट करने के लिए जब नीडल और थ्रेड का इस्तेमाल किया जाता है तो उसको हम एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। पिछले पीसीपी में आपने समझा था कि एम्ब्रॉयडरी की क्या खासियत है, किन किन जगहों पे कौन कौन सी एम्ब्रॉयडरी के नाम भी रख दिए गए हैं कि भाई बंगाल की एम्ब्रॉयडरी को हम जो है कांथा कहेंगे, हम गुजरात की एम्ब्रॉयडरी को कच्छ कहेंगे, इस तरीके से अलग अलग नाम है। और मगर इसमें एक और बात आपने सीखी थी कि डिज़ाइन का बहुत महत्व है, कि क्या चीज़ आप एम्ब्रॉयडरी करना चाहते हैं, किस पर करना चाहते हैं, किस ओकेज़न के लिए करना चाहते हैं, ये महत्वपूर्ण है। अब सवाल आ जाता है कि भाई एम्ब्रॉयडरी तो करें पर इतना सारा अपने आप करेंगे तो सब लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, तो चलो डिज़ाइन बनाते हैं अलग और उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो इतनी चीज़ें आपने पिछले पीसीबी में समझ ली थी। अगर आज भी आपका कोई इससे संबंधित सवाल है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं कि एम्ब्रॉयडरी की हम बात तो कर रहे हैं पर किस तरीके से की जाए
जी।
हमें दूर से तो बस लगता है कि अरे भाई बड़ा सुंदर सीनरी बनी है और हाथ से काढ़ी गई है, बड़ा सुंदर फूल और बूटी बनी हुई है, हाथ से काढ़ी हुई है। तो मगर वो कैसे काढ़ी गई है, कौन कौन से टाँके उसमें इस्तेमाल करे गए हैं, ये जानने का विषय है। और ये सिर्फ जानना ही नहीं, इसको प्रैक्टिस भी करनी होती है
जी।
कि जो भी कार्य है, जैसे अभी अभी आपने कहा कि ये वोकेशनल का भी रूप ले चुका है, तो हमारे NIS में भी एम्ब्रॉयडरी, चाहे इंडियन एम्ब्रॉयडरी हो, तो वो कई रूपों में सर्टिफिकेट के लेवल पर सिखाई जाती है। कुछ उसके एक्सपर्ट्स होते हैं, अन्य महिलाएं भी सीखती हैं और आजकल पुरुष भी बहुत सीखते हैं। तो ये जो मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि ये ऐसा ना, क्योंकि पहले जमाने एम्ब्रॉयडरी मतलब लड़कियां करेंगी, महिलाएं करेंगी, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। मगर जब वोकेशन की बात आती है या उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो हम पुरुषों को भी उतना ही काटते हैं। और मैंने बहुत रियल लाइफ में देखा है कि वो जब हम देखने जाते हैं, चाहे वो असम हो, चाहे वो लखनऊ हो, या कहीं पे भी, बराबर की खड्डी में चारों तरफ पुरुष महिलाएं दोनों ही बैठी रहती हैं और आपके लिए सुंदर सुंदर वस्त्र, साड़ी वगैरह एम्ब्रॉयडरी करके देते हैं। तो ऐसा नहीं है। और अगर वो ही लोग कुछ और अच्छे से तरीके से डायरेक्टेड मटेरियल को समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो हो सकता है आगे चल के वो और बेहतर कर पाए। दूसरा बात है कि जब वोकेशन आता है तो उनके वोकेशन का मतलब सीधा होता है कि इससे आप अर्निंग कर सकते हैं। एक महिला मिली थी मुझे पिछले साल
जी,
और उसने सिर्फ गले पे मुश्किल से आप 8 या 10 इंच का एक राउंड में सिर्फ क्रॉस क्रॉस बूटी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्रॉस डाली हुई थी और उसने इतना डालते ही उस गारमेंट का दाम जो है 800 रुपए बढ़ा दिया। चूंकि वो हम जानते थे तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई इसमें मुश्किल से 2 गज धागा लगा है और मुश्किल से 20 मिनट लगा होगा इसे बनाने में और ये इतनी देर में इतने पैसे ले ले रही है। तो इस चर्चा का यहाँ पर शेयर करने का पर्पस ये है कि अगर आप चाहें तो इससे धनोपार्जन कर सकते हैं। कितना क्या वो आपके उस पर डिपेंड करेगा, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को उतना मिल सके, पर आप ये एक रास्ता जरूर है। अब हम आते हैं कि ये क्रिएटिव चीजें हैं, टेक्सचर देता है, रंग हमें एम्ब्रॉयडरी से क्या क्या आना, देखो सुंदरता हमने बात करी, इससे कपड़े में टेक्सचर आ जाता है, इसमें कलर आ जाता है और डिजाइंस आ जाते हैं जो देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, और जो चीज़ देखने में अच्छा लगता है वो इंसान का मोरल भी बढ़ा देता है
जी।
और वो बहुत खुश होता है कि चलो वहाँ जाएंगे, आज एम्ब्रॉयडरी की पहन के जाएंगे तो हो सकता है कोई आपकी प्रशंसा करे और आपका मन अलग से प्रफुल्लित हो जाए। क्योंकि जब ये मेरे ख्याल से 30-40 बरस पहले की बात है
जी।
जब हर व्यक्ति महिला, तब ये टीवी वगैरह नहीं होते थे, व्हाट्सएप नहीं होते थे, तो महिलाएं अपना घर का काम खत्म करके अपना कभी कुछ कार्ड नहीं है, कभी कुछ कार्ड नहीं है, कभी अकेले घर में बच्चों के साथ है या कभी महिलाएं ग्रुप में जिसको हम कम्युनिटी बोलते हैं
जी।
और वही धीरे धीरे अब एनजीओज ने उनसे काम कराना शुरू कर दिया
जी।
तो है तो बेसिकली एम्ब्रॉयडरी, और आप देखेंगे कुछ जगहों की एम्ब्रॉयडरी में कलर्स बहुत ब्राइट होते हैं
जी,
तरह तरह के कांटे होते हैं, तरह तरह के टाके होते हैं, तो इस तरीके से जो उसमें बनाई जाती हैं चीजें वो एक अच्छा आकर्षण पैदा कर देती है।
डेफिनेटली मैम।
और कुछ बच्चों की फ्रॉक बिना एम्ब्रॉयडरी के जरा वो डल लगते हैं, छोटी छोटी एम्ब्रॉयडरी, छोटे छोटे फूल काट दिए जाते हैं। पहले हम लोग जो रुमाल देते थे बड़े बढ़िया भी होते थे और उनसे बहुत सारी जो चीजें हैं यादगार हैं जुड़ी रहती थी। और मुझे आज भी याद है हम लोग कितना वो काटते होते थे, किनारे हम ब्लैंकेट स्ट्रिप बनाएंगे अलग अलग रंगों की, अलग अलग हाइट की, कभी पीकू करेंगे, कभी उसमें वैरायटी देंगे, एक कॉर्नर में हम छोटा सा फूल काटेंगे, उसमें भी फिर कंपटीशन हो जाता था क्लास में कि भाई किसने कितनी कलर इस्तेमाल करे हैं, इतने करके भी अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये सब बातें जो हैं क्लास में जो गृह विज्ञान की छात्राएं हैं छात्र हैं उनको सिखाई जाती थी। तो उसी श्रृंखला में आज जो आप सीनियर सेकेंडरी के जो शिक्षक हैं खास और जो हमारे शिक्षार्थी हैं वो सभी सीख रहे हैं। दोनों लोग को सीखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि गैप हमारे यहाँ अभी एम्ब्रॉयडरी की तरफ लेते हुए, होम साइंस को लेते हुए थोड़ा हो गया है, तो शिक्षकों को भी दोबारा इसको सीखना आवश्यक हो जाता है क्योंकि प्रैक्टिकल में भी आपको कराना होता है
जी।
तो अब हम जो चर्चा करना का चाह रहे हैं कि एम्ब्रॉयडरी शुरू कैसे करें, एम्ब्रॉयडरी करनी है हमें भी आनी चाहिए, हमें बहुत डरते हैं कि हमसे तो एम्ब्रॉयडरी आती नहीं है, तो चलिए आपको हम सिखा देते हैं कि एम्ब्रॉयडरी आप स्वयं सरलता से कोशिश करेंगे कि आप ले सके। और जो लोग सुनने वाले हैं अगर चाहें तो घर का कोई भी कपड़ा ले लीजिए, सुई ले लीजिए, धागा ले लीजिए। अब इसी 3 चीजों को मैं ये भी साथ में आपको बताना चाहूंगी कि जो आप कपड़ा चुन रहे हैं, सपोज आपने एक कॉटन का कपड़ा लिया, रुमाल के साइज का लिया, पहले सीखने में हमेशा स्टिचिंग सीखिए, उसके बाद आप पैटर्न पे आइए क्योंकि वहाँ पे हाथ साफ होना वो आवश्यक है। आपने जो एक 12x12 का एक्सपेरिमेंटल कपड़ा लिया, धुला साफ तरीके से ले लिया, उसमें माण ना हो नहीं तो वो एम्ब्रॉयडरी में दिक्कत लाता है
जी।
फिर अपनी सुई को देखिए, सुई उसके अंदर आराम से आनी जानी चाहिए, यानी कि आप मोटी सुई बारीक कपड़े के लिए, बारीक सुई मोटे के लिए लेंगे तो आपको तकलीफ होगी और बार बार आपका धागा उलझ जाएगा और आप झुंझला के उसको कार्य को छोड़ सकते हैं। फिर आपका धागा जो है वो सुई के अंदर जाना चाहिए, सुई में एक पीछे आँख बनी होती है उसके अंदर चला जाना चाहिए। तीसरा, जो आपने डिज़ाइन बनाया है या लाइन बनाई है या खाली पत्ती बनाई है या खुली सर्कल बनाए, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं इस बात को ध्यान, तो वो आपने एक, इसको हम ओवरऑल कह सकते हैं एम्ब्रॉयडरी किट। और इसके साथ साथ एक फ्रेम आते हैं जो आपने जब पढ़ा था पिछली बार कि क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो अपने डिज़ाइन के हिसाब से आप एक दो फ्रेम रख सकते हैं जो दो हिस्सों का होता है, यानी कि एक फ्रेम को निकाल के बीच में कपड़ा फंसा के टाइट कर दिया जाता है। किसी में सीधा भी होते हैं और कुछ में किनारे पे पेच लगे होते हैं, जैसा भी आपको उपलब्ध हो वो आप लेके टाइट कर लीजिए। और एम्ब्रॉयडरी शुरू करने से पहले अपने हाथ धो लीजिए, भाई आप ही के गंदे हाथ होंगे तो कैसे बात बनेगी। अब आप स्टिच चूज करेंगे कि कौन सी स्टिच सीखी जाए जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फ्रेम लगा लीजिए, अपना डिज़ाइन डॉट जो भी करना है वो सब आप कर लीजिए। अब आते हैं हम पहले बेसिक स्टिच पे शुरू करेंगे
जी।
जब कपड़ा फट जाता है तो क्या करते हैं?
रफू
बहुत फाइन काम है
जी मैम,
मगर पीछे से आप कच्चा टाका लगाते हैं।
हाँ।
और कई लोग पुख्ता करने के लिए बैक दोबारा से वापस इसको हम कहते हैं बैक स्टिच।
ओके।
और ये कभी टूटता नहीं है, तो जो पुराने जमाने में जो जब मशीनें नहीं थी जिन लोगों के पास,
हाँ।
तो बैक स्टिच से ही वो कपड़ा सिला करते थे। ये जनरली राइट टू लेफ्ट होती है और बहुत स्ट्रांग और सिंपल होती है, यानी कि आपने एक जगह से सुई डाल ली, नीचे से आप सुई में जिसमें धागा है वो डालेंगे, मगर नीचे गांठ नहीं डालेंगे।
अच्छा,
तो ये बात इम्पोर्टेंट है कि यू विल नॉट स्टार्ट योर एम्ब्रॉयडरी विद द नॉट बट विद द बैक स्टिच। आपने ऊपर डाला, जितना लंबा धागा चाहिए वो लगभग दो सूत या आधा सेंटीमीटर एक चौथाई सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है। आपने उसमें से निकाला, जितनी लाइन में आपने डाला है फिर नीचे डालिए, उतनी ही लाइन में नीचे से सुई लीजिए, फिर उतनी डिस्टेंस बाद फिर से ऊपर निकालिए। तो इस तरीके से आप लाइन बनाते जाइए। दो लाइन के बाद जब ऊपर धागा आ जाएगा तो जहां से आपने पहले निकाला था धागा वहां पे सुई को फिर से डाल दीजिए, फिर आगे लीजिए। तो थोड़ी देर में आपको लगेगा जब आप चार पांच ऐसे बना चुकेंगे, पीछे पलट के जो धागा फ्री रह गया है उसको बीच में ही आप ट्विस्ट करके अंदर डाल सकते हैं और आपकी एक ये सीधी लाइन बन जाएगी। बिगनर्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जो है पेंसिल से उस कपड़े पे लाइन बना लें जिससे टेढ़ा ना हो। तो ये आपका सबसे सरल बैक स्टिच है जो आप किसी भी लाइन में, चाहे आप डायगोनल बनाएं, चाहे आप सीधी बनाएं, चाहे लंबी बनाएं, चाहे हॉरिजॉन्टल बनाएं, कैसे भी बनाएं, और कर्व भी बनाया जा सकता है। वहां पे आप लाइन में गोले की तरफ या पत्ती की तरह कर्व बना लीजिए और उस पे आप बैक स्टिच करते जाइए। और ये मैंने आपको एक और सलाह दे दी कि कभी आपका फट जाए, भाई अगर कच्चा टाका करेंगे तो फिर से उधर सकता है
जी।
बैक स्टिच कर लीजिए, कभी नहीं उधरेगा। जो साइड से किसी का कपड़ा फट गया है, ये डबल स्थिति आप प्रयोग में ला सकते हैं। तो ये हो गई आपकी बैक स्टिच। इसी तरीके से बहुत सारी स्टिचेस हैं हमारी एम्ब्रॉयडरी में जो हम कर सकते हैं
जी।
क्योंकि अभी हम पहली बार बात कर रहे हैं, इसमें एडवांस कोर्सेज बहुत हो सकते हैं, इसमें टाके बहुत वैरायटी हो सकती है
जी,
और क्रिएशन की तो कोई
लिमिट
नहीं होती है, आप जैसा चाहे कर सकते हैं।
तो
पहले मैं जो शिक्षार्थी हमारी कुछ के नाम लेना चाहूंगी, जैसे अभी अभी हमने बात करी कि बैक स्टिच
जी,
उसके अलावा स्टेम स्टिच, सैटन स्टिच, लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच, चेन स्टिच, हेरिंग बोन स्टिच, डार्निंग स्टिच, बटन होल स्टिच, क्रॉस स्टिच, ब्लैंकेट स्टिच, फ्रेंच नोट। तो ये कम से कम अगर ये स्टिचेस आपको आ गई हैं
जी,
जो मैंने आपको कहा पहले आप इनको करना एक साधारण कपड़े पे सीख लीजिए
जी जी,
तो आप इसको आगे तरह तरह के डिजाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे
जी।
हमने अभी बात करी थी कि बैक स्टिच किस तरीके से तैयार की जाती है, अब आते हैं स्टेम स्टिच पर
जी,
जो कि बेसिकली एक आउटलाइन स्टिच कहलाती है। स्टेम से मतलब है जैसे कि जो स्टेम है हमारा किसी फूल का, किसी डंडी का, या कोई लाइन भी है, तो उसमें हमारी ये स्टिच इस्तेमाल होती है और ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होती है और रेगुलर स्मॉल स्मॉल इंटरवल पे इसको दोबारा से, यानी कि एक जगह से आप सुई धागे को ऊपर करेंगे, फिर दोबारा उसको काटेंगे, फिर नीचे जाएंगे और पहले वाले के लगभग 1/4 पीछे दोबारा से सुई निकाल के फिर आगे जाएंगे। इस तरीके से स्टेम आपकी बन सकती है। और जनरली ये हमारा अगर फूल का कोई मोटिव लिया है हमने, तो उसकी डंडी बनाने में, पत्तियों की वेंस बनाने में, किसी की आउटलाइन बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। कई बार क्या होता है कि आउटलाइन हमारी खो जाती है, अगर ऐसे ही हम डाए तो लगता ही नहीं अरे भाई एक चाकर लंबा हो गया, एक छोटा, एक कोई फाइन शेप नहीं आ पाता है। उसमें भी हम इसको बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत फाइन स्टिच में कहलाती है। और नंबर ऑफ धागे किस तरीके से लिए गए, जैसे बहुत फाइन काम करना हो आप एक धागे से भी बना सकते हैं, और किसी पे जैसे वूलन है आजकल इसका बड़ा फैशन चल गया है तो यही स्टिच लेके आप वूल से भी तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब तीसरी स्टिच के बारे में बात करें जिसको हम साटन स्टिच कहते हैं। साटन जब वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है थोड़ी शाइन आ जाएगी सरफेस के ऊपर, जैसे साटन कपड़ा होता है उस तरीके से। और ये एक फिलर है, जैसे अभी हमने बात करी वो लाइनें थी, ये एक फिलर है। सपोज़ एक हमारी दो लाइनें बनी हुई हैं, एक ऊपर एक नीचे, या एक पत्ती का शेप लिया हुआ है एक ऊपर, तो आप क्या करेंगे, नीचे से आपने सुई में जो धागा डाला हुआ था वो निकाला, उसके दूसरे छोर पर जो लाइन है उसमें लगाया, वहाँ से नीचे डाला, फिर पीछे से लेते हुए फिर पहले के पास में आ निकाला, दूर नहीं निकालना इसमें। तो पास पास जब आप इसको एम्ब्रॉयडरी करते जाएंगे तो आप देखेंगे ऊपर से ये पूरा भर चुका है और उसमें आपकी थोड़ी थोड़ी धागे की शाइन आ गई है। तो फूल बनाने में, आपके रेक्टेंगुलर चीज़ों को भरने में, पत्तियाँ बनाने में बड़ा इस्तेमाल इस चीज़ का होता है और एकदम से भरा भरा लगता है कि भाई हाँ एम्ब्रॉयडरी करी, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी आप कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप खाली लाइनें डालेंगे और काम ख़त्म हो जाएगा, तो कोई कोई हिस्सा हमें भर के भी बनाना होता है और उस तरीके से शेप के किनारे किनारे आप डालेंगे। और कई बारी बहुत लंबे धागे मत लीजिए, ये नहीं कि आपका 2 इंच का चलो भर लेते हैं, एक यहाँ से निकाला दूसरा 2 इंच के ऊपर हमने नीचे डाला फिर नीचे डाल दिया, तो 2 इंच का जो धागा आप डालेंगे उसका जो शाइन भी नहीं आएगी, टूटने का भी रहेगा, उतना लुक नहीं आएगा और लाइन ख़राब होने का भी है। और जब कपड़ा इस्तेमाल करते हैं या एम्ब्रॉयडरी यूज़ होती है तो वो जल्दी हमारी सिकुड़ जाती है या पुल आउट हो जाता है। तो इन सब बातों का भी हमें हर स्टिच में कोई ना कोई, जिसकी हम चर्चा करते जा रहे हैं, इन बातों का हमें ध्यान में रखना है। और आप इस बात को बहुत ध्यान से सुने कि कब कब किस किस स्टिच को यूज़ किया जा सकता है। अब चौथी तरह की स्टिच हम बात कर रहे हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच। जैसा कि नाम से पता लगता है, ये जो आपने अभी साटन स्टिच सीखी
जी,
तो वही है, मगर इसमें जब हम काम करते हैं तो एक स्टिच छोटी लेते हैं और एक बड़ी लेते हैं, और ये भी फिलिंग के काम आती है। मगर जब हम छोटी बड़ी लेते हैं, आप कहेंगे बराबर क्यों नहीं ले सकते, बराबर हमने कहा कि भाई अगर बड़े बड़े लेंगे, हमने हमारा 4 इंच का फ्लावर हमें फिलअप करना है तो 4 इंच का लेंगे तो पुल हो जाएगा और उसकी ब्यूटी सब खत्म हो जाएगी, तो वो उसमें डेंसिटी डालने के लिए या बार बार ख़राब ना हो तो हम इस लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच का उपयोग करते हैं। और कई बारी हमें शेड डालने होते हैं, जैसे भाई गुलाब बनाया हमने या कोई फ्लावर बनाया, पेंसी बनाया, इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी भी काफ़ी प्रचलित है बड़े बड़े बूटों में या छोटे में, तो हम शेड डालना चाहते हैं तो उसमें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लॉन्ग शॉर्ट, एक रंग का हमने एक बना लिया, दूसरे रंग का दूसरा बना लिया, तो डिपेंड करता है। और इससे जो इस फाइनल जो अपील आती है वो बहुत शाइनी, इफेक्टिव, स्मूथ, और ये उस एरिया का शेप भी ले लेती है। और कई बारी क्या होते हैं, कच्चा टाका जो है जिसको है शेप में डाल लेते हैं जिससे कि बाहर ना निकले, तो इस तरीके से या पेंसिल से आप डायरेक्शन दे सकते हैं कि भी कितना लंबा देना है। जब आप बिगनर होते हैं तो वो डायरेक्शन आप पेंसिल से देंगे तो आपको सीखने और बनाने के लिए बड़ा आराम मिलेगा
जी।
एक और स्टिच जो बहुत कॉमन है वो है चेन स्टिच
जी,
यानी कि धागे को इस तरीके से घुमाया गया कि वो लगातार चेन बन गया और एक जगह अगर टूट गया तो आपने धागा खींचा और वो पूरी की पूरी चेन भी टूट जाती है
जी।
तो बड़ी इंटरेस्टिंग है ये, और इससे काफ़ी सारी स्टिचेस बन जाती हैं। और ये भी मैं बता दूं, जो कच्छ स्टिच होती है
जी,
वो चेन स्टिची होती है जो हमारे इंडिया में जो कच्छ की कढ़ाई आप देखेंगे उसमें बारीक 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 चेन 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 घुमा के लंबे गोल सब में चेन ही होती है
जी।
अलग अलग रंगों में अलग अलग टेक्सचर में बना दी जाती है। अब इसको कैसे करना है इसे थोड़ा सा ट्रिकी है। अभी तक जो आप स्टिचेस की बात करते थे सब सीधे थे, कोई छोटा कोई ट्रायंगल कोई कैसा कोई कैसा, मगर यहाँ पे आपने क्या करना है सुई धागा कैसे चलाना है ये महत्वपूर्ण बात है। आपने क्या करना है, एक जो आपने धागा जैसे नीचे से लेते हैं, आपने कपड़े के नीचे से धागा लिया, फिर आपने राइट से लेफ्ट लेते हुए धागे को सुई पर लपेट लिया, समझ आया
जी।
लेफ्ट से लेते हुए या राइट से लेते हुए आप धागे को सुई के ऊपर से घुमा लीजिए
जी,
और वो जो सुई आपने ऊपर निकाली थी नीचे से फिर से घुसाइए और लगभग आधा इंच या जितना भी आपको चेन की डेप्थ चाहिए या लंबाई चाहिए उतनी दूर पर निकाल लीजिए। सुई को आपने निकाल लिया, आपका धागा जो है वो सुई के ऊपर मुड़ा हुआ है
जी।
अब उसको धागे को पूरा निकाल के मुड़ा हुआ जो गोल हिस्सा हो गया उसके अंदर से टाका लेकर बाहर की तरफ सुई को नीचे ले जाइए तो आपकी ये एक चेन बन गई
जी।
तो इसको कहते हैं हम चेन स्टिच, और ये ऐसा ही आप लगातार करती जाएंगी जितना आपको चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कच्छ कढ़ाई का, आप इसको घुमा सकती हैं, आप सीधे ले जा सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। एक और इंटरेस्टिंग वैरायटी इसमें बताती हूँ जिसका नाम अलग है मगर तरीका यही है
सेम,
जिसको हम कहते हैं लेजी डेजी।
जी मैम, बहुत लोकप्रिय भी है जी मैम।
आपने तुरंत आपने दिया करा तो लगता है कि जी जी
मैम, नानी ने बहुत अच्छे से इसको स्टिच करके पहनाया है बचपन में लेजी डेजी की कढ़ाई।
तो जो मैं चर्चा कर रही थी कि छोटे छोटे बच्चों के जो कपड़े होते हैं
जी,
बहुत लॉन्ग शॉर्ट स्टिच की जरूरत नहीं होती है, छोटे छोटे डॉट डॉट कहीं आप लेजी डेजी डाल दीजिए,
बहुत सुंदर भी लगते हैं मैम,
प्रिटी लगते हैं,
बहुत प्रिटी लगते
तो
हैं।
उसमें क्या होता है लेजी डेजी और इसमें क्या चेन स्टिच में फर्क है, चेन स्टिच का तरीका वही है लेजी डेजी का भी। चेन में हम लगातार जो भी हमारा पैटर्न है लाइन है उसमें लगाते जाते हैं, मगर लेजी डेजी में यही टांका अलग अलग होता है
जी।
जैसे हमने चार फूल बनाना चाहा तो एक एंगल पे एक टांका दूसरे एंगल पे दूसरा और इस तरीके से सर्कल करके हम वो एक एक टांका चेन का बना लेते हैं और उसको हम लेजी डेजी बोलते हैं
जी।
कई बार हम लेजी डेजी से पूरा का पूरा हम चादर दुपट्टा उसमें बना देते हैं, उसमें हमको एक ही टाका बनाना है और पूरा जाल बन जाता है। इसमें आपको पीछे बड़ा ध्यान में रखना होता है, अगर आप जाल बना रहे हैं तो कैसे इस धागे को कटिंग करेंगे, कैसे खत्म करेंगे, कहाँ नॉट डालेंगे कहाँ नहीं डालेंगे, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। एंड व्हेन यू डू इट यू लर्न इट, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज है। आप जैसे एक कहावत है कि भाई क्लास में बैठ के स्विमिंग नहीं आ सकती, तो इसी तरीके से एम्ब्रॉयडरी करे बिना हाँ आपको तरीका जरूर सुनने को मिल रहा है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो रंग बिरंगों को चीजें। और एक और बात, जो चीज इंसान खुद क्रिएट करता है कैसी भी हो उससे एक अलग ही लगाव होता है
जी।
तो इस लगाव को इंटरेस्ट को काफी लोग कहते हैं अब क्या करें बोर हो रहे हैं, तो क्यों ना आप एम्ब्रॉयडरी की तरफ चलें
जी,
अपनी चीजों को सुंदर बनाने की कोशिश करें तो आपका जीवन अपने आप सुंदर होने लगेगा। अच्छा, अगली स्टिच पर आते हैं डार्निंग स्टिच। डार्निंग स्टिच कहते हैं जैसे हमने जो पूरा लंबा लंबा हमने धागा भर लिया जो भी हमारा डिजाइन है या शेप है, जैसे सर्किल आपने ली, तो इसमें आप जैसे हमने पहले बात करी थी कि आप जो है साटन स्टिच की तरह बना लीजिए इसको, और फिर आप इसके अंदर ऊपर नीचे कर सकते हैं, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आपका ये भी हो सकता है कि आप इसमें रनिंग स्टिच ऊपर नीचे रिवर्स डायरेक्शन में कर सकते हैं, कि मतलब आपको इधर से एक दिखाई देगा दूसरी तरफ से दूसरा दिखाई देगा, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बन जाती हैं कि ये फ्लोटिंग जिसको कहते हैं
जी,
इसके टाके को हम फ्लोट बात करते हैं क्योंकि फ्लोट सीधा टाका हो रहा है, उसमें हम दूसरा टाका को इंसर्ट कर रहे हैं जैसे आप कपड़ा बुनते हैं, तो ये हमारी डार्निंग स्टिच कहलाती है। इसके अलावा आती है हेरिंग बोन स्टिच, बड़ा टिपिकल सा नाम है HERRING BONE। हेरिंग बोन का मतलब होता है एक फिश का नाम है हेरिंग बोन, और इसको मछली का टाका भी बोलते हैं।
अच्छा
ठीक है, तो आपको समझ में आए कि भाई क्या कैसे नाम याद रखें, तो आपने हमने स्पेलिंग भी कर ली, जब आप कनेक्ट करते हैं भाई मछली जैसा तो तुरंत आपको समझ में आ जाता है कि क्या क्या करना है
जी।
तो इसमें एक जगह से आप धागा निकालेंगे, क्रॉस करेंगे ऊपर, फिर थोड़ी दूर में फिर से उस सुई को निकाल लेंगे
जी।
फिर वापस क्रॉस करेंगे, और पहले और आखिर क्रॉस में एक दूसरे को छोटे छोटे एजेस पे क्रॉस मिलेंगे, यानी कि जब अलग से आप देखेंगे तो मछली की शेप होगी, एक आपका मुंह रहेगा और पीछे उसके फिन का क्रॉस रहेगा, इसलिए इसका नाम जो है मछली का टाका पड़ा है। और ये बड़ी हमारी काम की चीज है, जो एजेस बनती हैं हमारी, बॉर्डर बनते हैं, भाई किनारे बॉर्डर डाल दो जरा, चाहे हमारा इसमें रुमाल का एज बनाना हो चाहे कुछ बनाना हो, वहां पे इसको काम कर सकते हैं। और इसमें बहुत वेरिएशन पैदा हो गए हैं
जी।
आप एक रंग से एक तरफ चलिए, दूसरे रंग से दूसरी तरफ जा जाइए, एक तरफ से आप धागा बना लीजिए इसको, फिर उसके अंदर तीसरे रंग का धागा डालते जाइए ऊपर नीचे, तो इतनी वैरायटी आप इंटरलेस करके इसको बना सकते हैं। और आजकल तो मैंने देखा इसको इस्तेमाल करके जो है रिबन तक इस्तेमाल हो रहे हैं, वो एकदम से ही आपको उभर जाता है, एम्ब्रॉयडरी भी हो गई, पतला पतला रिबन है, बहुत सुंदर आपका ड्रेस जो है वो तैयार हो जाता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग हमारी है बटन होल, नाम से ही जैसे चर्चा आ रही है कि बटन होल
जी,
यानी कि बटन का होल बनाते समय जो भी हमारी स्टिच लगती है वही स्टिच का नाम बटन होल रख दिया, यानी कि आप जो है एक छेद करें या ना करें, किनारे का सर्किल बना लीजिए और बीच में से आप सुई को निकालिए, फिर उसके पीछे से निकाल के जो आउटर सर्किल है और उसके ऊपर से धागा डाल लीजिए और चारों तरफ सर्किल के किनारे किनारे घूमते जाइए, तो आपका बीच का हिस्सा थोड़ा छिद्रित हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा और किनारे आपके बंद जाएंगे। इसका सबसे बड़ा उपयोग ये है कि आपके जो एजेस हैं वो फिर कभी भी छोटे छोटे थ्रेड जो अदरवाइज छेद होने पे टूट जाता है वो नहीं होता, इसीलिए ये बटन में काफ़ी इस्तेमाल होती है। आप ऐसे सोचिए कि बटन आपका शर्ट की एक आई बनी
जी,
वो आधा इंच की बनी, मगर यही स्टिच होते हुए नहीं तो रोजमर्रा आप बटन डालेंगे तो कपड़ा ही फट जाएगा, तो वहाँ पर इसका उपयोग बहुत अधिक होता है। एक और जगह, हम जब छोटी छोटी बात कर रहे हैं कि डेंटी से डिजाइन हो, तो आप सीधा का सीधा इसका गोल बनाइए, एक फूल का रूप मिल जाएगा, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, बीच में कोई और टाका डाल दीजिए और उस टाके के पे भी हम धीरे धीरे आ रहे हैं वो आप यूज कर सकते हैं, बढ़िया सा आपका एक फूल तैयार हो जाएगा। और उसकी पत्ती के लिए आप स्टेम स्टिच ले लीजिए, साटन स्टिच ले लीजिए, इस तरीके से आप छोटे छोटी, जब हम कहते हैं ना छोटी छोटी बूटी, कम मेहनत में आपका अट्रैक्शन बहुत बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं ब्लैंकेट स्टिच, ये ब्लैंकेट स्टिच जरूर है मगर एज के लिए बेस्ट है, चाहे वो ब्लैंकेट हो आपका, चाहे आपका टेबल क्लॉथ हो, चाहे आपका हैंकी हो, कोई ड्रेस हो, एजिस पे काम करने के लिए ब्लैंकेट स्टिच बहुत उपयोगी है। इसका जैसे अभी हमने बात करी, अगर एजिस हम सील नहीं करेंगे धागे से तो हमारी वो एजिस से छोटा छोटा फाइबर निकलता जाएगा जो हमारे कपड़े को ख़राब भी कर सकता है और जल्दी फट भी सकता है। तो हम ब्लैंकेट इसलिए क्योंकि हमारे को जो ब्लैंकेट एक जो उससे निकलता है हमारी इंडस्ट्री से, किनारे उसके ख़राब होते हैं, तो उसको बांधने के लिए ये बड़ा ही अच्छा तरीके। इसमें भी आप नीचे लेते हैं पर निकालते ऊपर से आधा कर्व करते हुए सुई के धागे के साथ कर देते हैं
जी।
फिर है फेदर स्टिच और बाकी चीज़ें जैसा कि नाम से आप हैं, और क्रॉस स्टिच बहुत पॉपुलर रही है, हमने भी बचपन में काफ़ी सारी जो मैटी आती थी जिसमें खुद छेद होते थे, बस उसमें क्रॉस बनाते जाओ, किसी भी रंग का कुछ ना कुछ डिज़ाइन बन जाता था, चाहे आप सारी लाइनें बना लें, तो बहुत पॉपुलर है। इस तरह की एक फ्रेंच नॉट होती है जो एक सुई में हम बार बार कई सारी रोटेशन कर देते हैं, फिर उसको सुई को खींच लेते हैं, वो आपका रोज जैसा बन जाता है, एक डॉट जैसा बन जाता है। तो इस तरीके से आप काफ़ी सारे स्टिचेस का उपयोग अपने अपने डिजाइन जो अभी आपने सेलेक्ट करा है उसमें कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सिंपल तरीके से उपयोग कर सकते हैं। आज जो हमने सीखा एम्ब्रॉयडरी क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है, किन किन बातों का ध्यान रखें, और बेसिक जो स्टिचेस हैं, टाके हैं, किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, किस तरीके से उपयोग। और एक बात और मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगी, ये जो हमारा होम साइंस सीनियर सब्जेक्ट है, सीनियर सेकेंडरी, ये उस पूरी बुक का, पूरे कोर्स का आखिरी लेसन है। तो आप जो कि ऑप्शनल मॉड्यूल है, जो आप जानते हैं, और वोकेशनल में भी ये बताया जाता है, तो मगर ऑप्शनल मॉड्यूल और ये जो है अभी भी हमारे उसमें आते हैं, तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये हमें एक कक्षा के तौर पे भी हम सीख रहे हैं, और हमारे अगली बार से हम इसको फिर से हम इसके पहले जो है लेसन से बात करना चाहेंगे। उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा इस दौरान, हमारे बहुत सारे पीसीपीस हो गए हैं, हर एक लेसन में से कभी दो कभी तीन रहे हैं, और हमारे टोटल हमारे लगभग 34 लेसन्स होते हैं, जिससे आपको ज़रूर ज्ञान लाभ हुआ होगा।